वो व्यापारी था, उसने भैंस देखते बता दिया, यह भैंस तो भाई 7-8 महीने तो ब्याह होली और यू बच्चा किसी और भैंस का ला रखा है, या दूध दे को ना। वह ऐसे ही एक दिन दूध दे, दो दिन ना दे, तीसरा दिन देने लगी 2-4, 1-2 किलो और कति बंद हो गया, दूध दिया ही नहीं। वह 2500 की बेची, 10000 की लाया था। अपने आत्माओं, एक दिन वो क्या बता रहा था, बोला जी मैं एक वर्ष के बाद साइकिल पर चला आऊं था और एक फोर व्हीलर में दो भैंस थी, बढ़िया भैंस, और वो एक्सीडेंट होकर दोनों मुर्गी वहां, वो फोर व्हीलर जो व्यापारी था वो भी छोड़ गया, उसने अभी मरते लिए भी खड्डे खोदने की और समस्या होगी, वो भी चला गया छोड़ गया उन्होंने नौकरी ने, वो फोर व्हीलर वाला वही खड़ा। तो वहां से और आदमी आए, आवे रुके, वैनाश हो गया, वैनाश हो गया, वो इतनी बढ़िया भैंस ही तो 30-40 हजार के, पहले सस्ता रेट था, 20 हजार तक कम एक भैंस को ना। वो कह रहा जी मैं भी साइकिल रोक के खड़ा हो गया, भाई क्यों करके हुआ, किसकी भैंस थी, कौन था। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति था और उसको वो जानता था के मेले में, उसी से मैंने वो भैंस ली थी। वो व्यापारी की फिर दो भैंस मरगी कठिए, उसने 10000 उसका टोटा करा बेचारे का, उसका 40000 का हो गया। पुण्यात्माओं ये कति बिच पल्ला गांठ ला लियो, आज नहीं तो 10 दिन पाछे आपने जब किसी के साथ धोखा किया है तो आपके साथ अवश्य होगा, परमात्मा का विधान बदल नहीं सकता। हाँ अब परमात्मा ठीक है, अनजाने में जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, आप उपदेश लीजिए भगवान का, आगे गलती ना करियो। और जब आप भक्ति करने लगोगे ना इस मार्ग में, आपको वो बातें याद आएंगी, हक मैंने उसके साथ ऐसा जुल्म किया था, मैंने उसके साथ ऐसी गलती की थी, और आप परमात्मा से पश्चाताप करोगे तो आपके उस पश्चाताप से, क्योंकि ये भक्ति कर रहे हो आप, और उसके प्रति हमदर्दी होगी, एक मैंने घनी गलती की तो आपने जो उसके साथ किया हुआ था वो गड़बड़ आपकी भक्ति से ऑटोमेटिकली परमात्मा उसको लाभ देगा, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा जाएगा और उसको घना लाभ होगा, अर्थात आपका और उसका जो टिट फॉर टैट का जो सिस्टम था वो खत्म करके उसको भी लाभ देगा दाता, और आपका भी पीछा छुटवा देगा। आप वो आपस में जो तुम्हारे आपको जो हानि होनी थी वो नहीं हो पावेगी जब आप पूर्ण परमात्मा से उपदेश ले लोगे। ये परमात्मा का विधान है बेटा, बच्चों तुम्हारा ही यह समझ में देरता आवेगी। आप कोई पहली कक्षा का बालक है, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई 2 साल का, कोई 3 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 वर्ष से, और जो पुराने भक्त हैं और जो सच्चे दिल से लगे रहे आज तक, कभी डगमग नहीं हुए, आज उनके वारे नारे कर रखे परमात्मा ने। इस दास ने प्रारंभ में कहा था कि तुम सच्चे दिल से लगे रहना, गांव में आपके घर नारे छाट देगा परमात्मा। यदि हम डुप्लीकेट ढंग से लगेंगे तो इसे लाभ मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा की यथार्थ भक्ति ना मिलने से हम अपने सत्र से जीव संज्ञा में, जीव की सोच से सेठ बनना, साहूकार बनना प्रारंभ कर दिया हमने, चोरी करके, मिलावट करके, रिश्वत लेके। रिश्वत और मिलावट, चोरी और ठगी, इस पैसे से यदि आप अपना परिवार पोषण करते हो तो एक दिन आप जी ने अपने परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नोट कर लेना कि तभी इंपॉर्टेंट नोट में, और इसको त्याग कर भगवान की भक्ति सच्चे दिल से कीजिए, आपके घर में देखो कितने सुख होंगे। पुण्यात्माओं, एक समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे, परमेश्वर कबीर जी बनारस में, काशी में, वहां एक शारदा नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसका बेटा था सर्वानंद, और सर्वानंद इतना इंटेलिजेंट था, उसने चारों वेदों 18 पुराण और महाभारत गीता इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था, और अपने समय के सभी ब्राह्मणों को विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। और शारदा उसकी मां थी, वो बहुत पीड़ा, उसको बहुत परेशानी थी, मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट। अपनी मां के दुख निवारण के लिए सर्वानंद ने भी सभी जंतर मंतर वेदों अनुसार जो भी साधना अनुष्ठान थे वो सब कर करवा लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ। तो सर्वानंद ने कहा, मां ये आपके प्रारब्ध का भोग है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अब उस शारदा को किसी ने बताया कि वहां कोई एक संत है, मंडलेश्वर है, वो आपको ठीक कर देगा। वो वहां गई, उसने भी जंतर मंतर बताए, उसने सारे किए, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उस महर्षि ने भी कह दिया कि माताजी ये आपके प्रारब्ध का भोग है, ये तो भोगने से ही समाप्त होगा। और फिर वो व्याख्या दिखा दी बृहस्पति जी की कि इंद्र से बृहस्पति जी ने कहा था कि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है। अब वो पुराणों को जानने वाले ब्राह्मण थे, वह बुढ़िया भी इस बात न समझा थी, जो देवी पुराण में लिखा है तो सही बात है, चुप होगी। फिर दूसरे के, फिर किसी ने बताया कि एक गुफा में एक बड़ा सिद्ध पुरुष रहता है, वो बड़े दुख निवारण करता है, वहां चली गई। उसने भी कुछ जंतर मंत्र बताए, आशीर्वाद दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने भी कह दिया कि माई ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज। एक कबीर परमेश्वर जी की एक शिष्या थी, उसने एक दिन उस शारदा जी से कहा कि बहन जी कुशल हो? अक नहीं, कोई कुशल नहीं, बहुत दिनों से बहुत पीड़ित हूं, सभी औषधि करा ली, इलाज सब जगह करवा लिया, उपचार करवा लिया, जंतर मंत्र सब संत मंत्र देख लिए, कोई लाभ नहीं होता। सभी ने यही बताया है कि अब तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा दुख का अंत होगा, अब उस मृत्यु के दिन की इंतजार है, कब मरूं, कब मेरा दुख निवारण हो। तो उस बहन ने कहा कि आप जी का दुख दूर हो सकता है, आप हमारे गुरु जी के पास चलो, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो। शारदा ने कहा, बहन मैं सब गुरुओं से थक चुकी हूं, अब मेरी हिम्मत नहीं रही किसी गुरु के पास जाने की। सभी ने जंतर मंत्र बताए, मैंने सारे कर लिए, फिर कहते हैं तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है। उस बहन ने कहा, जो परमेश्वर कबीर जी से परिचित थी, उसने अपनी आप बीती बताई कि मैं इतनी कष्ट में थी, मैंने भी उन संतों के पास जाकर के जिसके पास आप गई हो उनसे भी मैंने फरियाद करके देख ली, उनके द्वारा बताए गए क्रियाएं की थी, कोई लाभ नहीं हुआ, और परमेश्वर कबीर जी के पास जाती मैं तुरंत ठीक होगी। तो फिर उस शारदा जी के कुछ जो है आशा की किरण नजर आई, उसको कहने लगी, बहन फिर कौन है तेरा गुरु? कि मेरे गुरु जी हैं कबीर जी। बहन कहां रहते हैं? कि जुल्हा कॉलोनी में। जुल्हा कॉलोनी में गुरु कौन हो गया? क्या वो धानक है? हां बहन जी, वो धानक है, लेकिन वो परमात्मा है। मरण न हो रही बुढ़िया, अर्थ कति तड़फ बुंडी डाल, सांस साबित आवे नहीं, नाक से कोट दिया। बोलिया, अच्छा कर दे मारे धर्म ना नष्ट, मैं ब्राह्मणी रो दानक है, हम तो जगत के गुरु हैं। या बीमारी अभिमान की और हमारे ला रखी काल ने, पड़ी पड़ी खाट में सांस गिड़े और फिर टिडगी एकदम पारा आई हो गया। बोली अच्छा दानक तो नाम ले लो, तुमने बड़ा बात बताई, आज के बाद जिक्र भी ना कर दिए मेरे आगे। अब वो बहन कहने लगी देख ले शारदा, आज तू ब्राह्मणी है और कल मान ले आप किसी दानक का जन्म ले लेगी, क्या ऐसा नहीं विधान है? अब नो तो ब्राह्मण कुल में जन्म था, विधान से तो परिचित थी, कहां जन्म तो दूसरा भी कहीं हो सकता है, और कल न तो कुतिया बन गई तो फिर ये ब्राह्मण समाज कित जाएगा। अब इन सच्चाई की बातों का अंदर ठोक तो लगी, उसके ठेस तो लगी, लेकिन यो अहंकार ना मानन दे, तन्यों कह देखी जाएगी, फिर तो देखी के जाएगी, गदी बने पाचद कुमार देखेगा, देखना थी देख छोट बीमारी ने लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, ये मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइये। ना मानी, कुछ दिनों के बाद फिर एक और ब्राह्मण कुल से एक बहन गई, उसने भी ऐसा ही कहा, तो उसने सोचा कि शारदा ने सोचा ये ब्राह्मणी है, इसने अवश्य कोई गुरु ब्राह्मण बना रखा होगा, उसे भी पता चला कि कौन है तेरा गुरु, कि वो कबीर भगवान, वो कबीर नाम से परिचित होगी, फिर वह अगो धानक खा मैं ना नाम मैं हम ब्राह्मण तन्ने नाम ले लिया खा, मैंने नाम ले लिया तने सर्वनियति ब्राह्मण होकर धानक की चेली बन गई। तो उसने बताया कि मेरे दुख न मैं जान सकूं, ब्राह्मण कुल ने कुछ ना दिया मेरे थे, वहां जाते मैं सुखी हुई। तो नहीं मानी, फिर कुछ दिनों के बाद परमात्मा कहता है जो जन हमारी शरण है कभी भी रहा हो किसी जन्म में, और ताका हूं मैं दास और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर परमात्मा का एक शेष ब्राह्मण उनका निकटतम रिश्तेदार है, वो भी बहुत दुखी था, तीन चार बच्चे थे, चारों बच्चे परेशान, पत्नी को तकलीफ और स्वयं टोटे में गणा दुखी हो गया उनके इलाज ट्रीटमेंट में। उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ है, वो रामानंद जी का भी शिष्य था वो ब्राह्मण पहले, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हुआ था, पहले दिन अपने अपनी पत्नी को लेकर आया, वह स्वस्थ हुई, फिर लड़कों को लेकर बेटी बेटियों को लेकर आया, बेटों को धीरे धीरे सबने उपदेश लिया और सुख हुआ। एक दिन वो पहुंच गया शारदा के पास, कुशल मंगल हुई, शारदा ने बताया क्या बताऊं नाती, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं और कम से कम 10 वर्ष से इस दुख को भोग रही हूं। तब उसने बताया कि शारदा हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, देख मेरा के हाल था, आप तो परिचित हैं, मेरे ऊपर बहुत घना कर्जा हो गया था, बच्चों के इलाज में सब जगह जा लिया था, जहां तू जाया करती मैं भी जाया करता, तुझे मालूम है कहां जाया करता, आप ठीक हो गए, मैं कति स्वस्थ हो गया, मेरी पत्नी स्वस्थ होगी, मेरे घर का सारी स्थिति बदल गई, आज 3 साल हो गए मैंने नाम लिए। अब वह बैठगी, एकदम बैठी होगी, अब ठीक है, कौन है आपके गुरु जी, मुझे भी ले चलो। उसने बताया कि वो कबीर जी, उल्टी पड़गी बुढ़िया खाट पे, एक तो शर्म नहीं आई, ब्राह्मण हो गए दानक ते नाम ले लिया। तब उसने उसको खूब जाड़िया उसके, क्योंकि रिश्तेदार रिश्तेदार को अच्छी सुना सके और वो सुनने को विवश भी होता है। कहने लगा कि इस ब्राह्मण कुल ने मृत के दे दिया था, किसी रिश्तेदार से मैंने 2000 रुपये ले लिए ना बच्चों के इलाज के लिए, दोबारा चला जाता था, मेरे तो मुंह तो बात नहीं करा करते और दरवाजा बंद कर लेते थे कई, तो उनको ये सोचा करते कि ये पैसे मांगना आया होगा आज फेरे, और आज मेरी वो स्थिति है, वो रिश्तेदार मेरे से लेने आते हैं और मैं सहर्ष देता हूं। ना मानी, नहीं मानी, इन वाली ठीक से मैं तो नाम लोगों को ना मरे जाऊंगी, वो बोला मरता जाओगी इसमें के आसान है, ये तो मरिए पड़ी है और मर के जाओगी, तो और आगे की बनेगी, तेरा कित कुतिया बनी अंडेगी, वो भी दुख मिटेगा इस भगवान के दरबार में। ने बोली मैं तो कुतिया ही बन जाऊंगी। तो इसे कर्महीन हो जाते हम, या लोक लाज की बाढ़ या जाति प्रथा की बाढ़ हमारे सी अड़ाजी काल ने दीवार खींच रखी है, मजहब की जाति की। इन सभी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए परमात्मा आए थे कि तुम एक हो, अलग नहीं हो। सब व्यवस्था बता रखी है ग्रंथ साहब में, कभी समय आने पर बताएंगे डिटेल से। अभी तो ये ज्ञान को सुचारू करने के लिए एक मेन मेन से पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप भगवान को पहचान सके। अब वह सोच रही है कि भी सचमुच यू आदमी तो इतना दुखी था, मैं तो इसका पासिंग भी को ना, मैं तो अकेली दुखी, इसका सारा परिवार इतना कष्ट में था, ये जहां मैं जाती थी वहीं जाता था, आगे पाया करता बैठा रोया करता था, आज यू ठीक हो गया। फिर वह अड़ जा मैं बामणी और वो दानक, ना 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 कोई मन में सो सो बार उठे इलोर सी, फिर यू काल दाव दे उल्टिए। अब परमात्मा कहते हैं हम भी पक्के हैं भाई, छोड़ना को ना। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसी शारदा के पड़ोस में किसी गरीब के घर पे सत्संग था और वो सत्संग जिसका हो रहा था वो आस पड़ोस में नोता दिया करती, इनविटेशन देते हैं कि महाराज आइयो सत्संग होगा। तो वह बहन गई उसके घर पे, कुशल मंगल पूछा शारदा के घर। तो शारदा ने कहा बहन मैं तो बहुत दुखी हो रही हूं और 10 वर्ष से भोग रही हूं यहां पर ऐसे ऐसे। उसने पूछा कोई इलाज नहीं करवाया, करवा लिया सारे। फिर उसने कहा कि हमारे यहां सत्संग होगा, आप सत्संग में आइएगा। कौन है तेरे गुरुजी, कौन आवेंगे? कि मेरे गुरुजी हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी। उन्हें सोची चल ये सारे नौके हैं और यह भी बहुत दुखी थी, आज यह भी सुखी होगी। तो उसने के सोचा कि आज मौका लग गया, आज मैं भेष बदल कर जाऊंगी। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणी जो है पहले साड़ी बांध जा करती सभी, और दूसरे जो वर्ग के हैं वो कोई कोई धोती बांध लेती थी, कुछ दामन पहरा करती थी, इस तरह के वेशभूषाएं थोड़ा सा भिन्न थी। ये शनिवार टाइम नहीं था उस समय पहनावा। तो उसने सोचा भेष बना के नोरा कैसा और मैं जाऊंगी महाराज जी के पास, यदि मेरे सिर पर हाथ रखने से आशीर्वाद से मैं ठीक होगी तब पैर पकड़ लूंगी, ना तो उल्टी आ जाऊंगी, किसी ने को पहचाना भी ना आगा मेरे को। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी पहुंच गए, उनका आसन लगा दिया सामने, छोटा सा आंगन था उसमें सत्संग गर्मियां के दिन, और एक दीपक जगा, ज्योत जगाते हैं जैसे खड़ी ज्योत, वह दीपक का भी काम करे थी, रोशनी का बल्ब, लाइट का भी और अवन का भी। पहले लाइट नहीं हुआ करती, 600 साल पहले, 550 वर्ष पहले टिमटिमाता सा प्रकाश होता था, तो सभी श्रोता आ रहे थे, ऐसे चरण छू रहे थे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, बहन एक तरफ भाई एक तरफ। वह भी आई घूंघट काट के और बेस बना के और जा रही थी ना, 5-4 कट्ठी लाइन में खड़ी होकर तुम पाछा 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 जाके नू कर लिया। वो तो अंतर्यामी थे, सिर पर हाथ रख के नू बुलाए सर्वानंद की मां आड़े के ऊपर आएगी दानक दौरे। इतना ब्राह्मण के कहेंगे एकदम जो मालिक ने हाथ रखा था ना उसका सारा दुख दूर हो गया, जैसे पहाड़ सा उठ गया, पत्थर सा वजन सा हट गया उस शरीर पर, और चरण पकड़ दिए, पैर पकड़कर रोए रोए। अन्यों कहे परमात्मा मैंने माफ कर दियो, मैं नीच आत्मा हूं, क्योंकि पुण्यात्मा इस शरीर में दो का मेल है, एक मन और आत्मा का। मन यू काल है, यो अभिमानी है, आत्मा बहुत विनम्र है, दयालु है, और परमात्मा के सामने यू मन भाग जाता है, आत्मा रह जाती है। तो उसमें मन दुष्ट चला गया था, आत्मा रह गई थी, आत्मा सारी गलानी करती है, परम पिता मैंने आपको बहुत गलत शब्द कहे, मुझे क्षमा करना। परमात्मा बोले बेटी सत्संग सुन, पहले तो पाछा बात करूंगा, टाइम को ना। और भगवान जो दुख मेरा किससे तो आराम नहीं हुआ, आपके आशीर्वाद से ठीक होगी मैं। और मैं यही सोच कर आई थी आप तो सचमुच परमात्मा है। फिर मैं सत्संग सुना अपनात्माओं, ये उद्देश्य यही तरीका था परमात्मा कबीर जी का कि एक बार इसका वो प्रारूप कर्म रूपी कांटा निकाल दूं, फिर इसका नो विश्वास हो जा कि यहां है कुछ। पहले तो नहीं होगा कि है कुछ और फिर पाओगा सब कुछ। अब क्या है, जैसे यहां भी भक्त आते हैं और परमात्मा सहारा देता है, सुख देता है, तो फिर वो दोबारा फिर कहा जाता है कि महीने में अवश्य आना है। फिर तो महीना छोड़ 15 दिन आने लग जाते हैं, उनको इतना सुख देता है मालिक, तो उनको सुख होते ही वो आते हैं। आते हैं तो यहां ज्ञान भी सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो फिर भगवान का भी दान से परिचित हो जाएंगे। तो सुख कुछ ऐसे सुख हैं जो हम मांगते हैं और परमात्मा देना हमें नहीं चाहता, और आपको ज्ञान नहीं है, और वो सुख जो परमात्मा नहीं चाहता था आपको आगे जाके हानि हो और वो आपको ना मिला, तो आप चाहे कितने सुख दे लिए हो, कितना लाभ दे दिया हो, एक ना हो इस प्राणी को जब वो ढीला कर देगा। और साथ में ये ज्ञान इसलिए आपको सुना जा रहा कि आप फिर डगमग नहीं होगे, आप डिमांड कुछ कर रहे होंगे भगवान नहीं देना चाह रहा होगा आपके हित में, तो फिर आप इस ज्ञान के आधार से डगमग नहीं हो सकते। तो इसलिए ज्ञान सुनाना घना जरूरी है। तो उसने ज्ञान सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश का विधान सुना। पहले तो चिंगरा हुआ जो दुख ना होता तो उसका ऊपर है, अरे सुख हो गया वह जो भी परमात्मा बतावा सारी सच्ची बाने कहा जी ने, मैं तो सारे धक्के खा लिए थे, विष्णु पूज लिया था, शंकर जी पूज लिए थे, विष्णु जी सारे देवता दुर्गा की तो मैं कट्टी पुजारण थी। अब पुण्यात्माओं आज वह स्थिति आपकी है, आप जी सब जगह धक्के खा चुके हो और कितना रात नहीं मिली, या आते सुख होगा, पर होगा किसको जो कति एक रस होकर लाग जाएगा बीच में, मन में कोई दोष ना रखे। तो ऐसे उसका कोई दोष रहा नहीं, कति सुखी होगी। अब उसने सोचा ये मेरा बेटा इन वेदों को सिर पर धरे अंड है, इसमें तो भगवान का मंत्र है कोई ना, एक ओम नाम है ये तो काल तक का है। तो उसने अपने बेटे से कोशिश की कई बार समझाने की कि बेटा तू नाम ले ले इसने छोड़ दे, ना माँ आप तो बका नहीं कबीर ने, वो के जाने उतन पड़ आदमी है, तंबूरे लेकर गावे है, उसके पास क्या है माता जी कि तो जिक्र ना करिए ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब माँ ने सोची ठीक सके वो कौन इस डांगर थे। तो एक दिन उसने क्या किया, सर्वानंद ने सोची मैंने सभी अपने अब समकालीन सभी विद्वानों को ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वजीत रखाऊंगा, सर्वजीत, और सर्वजीत से सभी जान जाएंगे, कहने की जरूरत ना पड़े कि मैं किस लिए सर्वजीत हूं, सबको हरा दिया मैंने, सब पे विजयी हूं। उसने अपनी मां से प्रार्थना रखी अपनी मां के सामने कि मां मेरा नाम सर्वजीत रख दो। उसकी मां बोली बेटा सर्वानंद के मुंडा नाम है, ये कौन सा बुरा नाम है, बहुत अच्छा बेटा। अक नहीं माता जी मैंने ना सारे विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में अध्यात्म ज्ञान में, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा रखे मेरी मां के सभी को बिना बताए पता लग जाए कि ये है वो सर्वजीत जिसने सब महात्माओं को संतों को पराजित कर दिया। उसकी मां बोली बेटा तू यदि मेरे से सर्वजीत नाम रखवाना चाहता है तो एक विद्वान को और पराजित कर दे। अब कौन है मां वो कि कबीर भगवान मेरे, उस कबीर परमात्मा जी को तू पराजित करे बेटा, और लिखवा के लाइए कि देव वैसे आज मैं नहीं मानूंगी, और अंगूठा हो गवाह हो उसके साथ में। अब ठीक है माता जी, अभी गया अभी आया, दोपहर का समय जून का महीना गर्मी के दिन, वो क्या करता था बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाला अगर थैला, ऐसे एक थैला डालता था उसमें चारों वेद 18 पुराण महाभारत गीता और ये सारे शास्त्र रखा करता है उपनिषद। वो दरके सारा साजबाज और चल पड़ा जुलाहों की कॉलोनी में। कबीर परमेश्वर के यहां एक मुंह बोली बेटी थी उनकी, जो एक शेख तकी पीर की बेटी कब्र में से निकाल कर जीवित की थी, हजारों आदमियों के सामने 12-13 साल की लड़की थी। तब वो परमेश्वर कबीर जी के साथ रहने लगी थी बेटी के रूप में। उसने कह दिया था कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया। तो वो लड़की कुएं पर पानी भर रही थी, दोपहर को जल निकाल रही थी और बर्तन में डाल रही थी कड़े में, दोपहर का समय, लीला सतगुरु की। अब वो ब्राह्मण जब जुलाहों की कॉलोनी में आया तो जुलाहों की कॉलोनी में और सर्वानंद जैसे विद्वान जिसका बोलबाला हो वो आ जावे तो गर्कतन झोपड़िया में तो निकल निकल कर सारे जुलाहे नो देखे, जैसे गांव में हाथी आ जाया करता उसने देखा करते हम छाता पर चढ़ चढ़ कर छत पर बैठ कर कुछ वैसे खड़े होकर के ऊंचे से पे तो ऐसे देख रहे सभी बाहर निकले, ये कौन ब्राह्मण आ रहा है, कहां जा रहा है, किसके जाओगा। उधर से परमात्मा ने इसी दया करी, उस ब्राह्मण ने सर्वानंद को इतनी प्यास लगा दी कि 2 मिनट जल ना मिले तो मर जा, प्राण निकल जा उसके। और वो उधर से पहुंचा था कुएं पर, किसी लड़की से पूछूंगा कबीर का घर। तो उसने कहा ए लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, प्यास जान निकलने वाली है मेरी। लड़की ने बाल्टी पानी निकाल रही थी, वो न्यू का न्यू ले महाराज जी पी लो। अब सर्वानंद ने ऐसे करके वो पेट भर लिया। जब उसकी प्यास बुझ ली, जान बच गई, जब नो देखा कोई किसी ने देखता नहीं रिया, मैंने दानका का पानी पी लिया। वो देखे सारे देखे वो चौगड़ गए अपनी इज्जत बचाने के लिए, इन्हों कहे लड़की ये कौन जाति का कुआ है। उसने कहा महाराज जी जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ होगा, बामना का तो कोई नहीं, जुलाहों का है। लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से धानकों का कुआ है। लड़की बोली कि तेरा पेट भर गया जहां तो बकवाद भावा तने, पहले पूछा कौन तने किसका है, जब तो मर गया बेटी पानी पिला, पहले पूछ लेता मैं कि जबाना थी मेरा पहले बता दू। तेने बोली ये लड़की मुझे ये बता वो कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है, क्या करेगा। अक मैंने उससे कुछ बात करनी है। तो कहने लगी आ जाओ मेरे साथ साथ, मैं कबीर जी की बेटी हूं। लड़की वो मटका उठाकर पानी का आगे आगे, सर्वानंद वो बैल लेकर पीछे पीछे। लड़की थोड़ी स्पीड से चल पड़ी, पिताजी ने चौकस कर दू कोई सिर मगज मारन आवे आपके साथ। अंदर जाते ही उसने कहा पिताजी एक ब्राह्मण आवे और पूरा थैला भर रहा बैल के ऊपर सारे शास्त्र ले रहा है, आप तो नहीं गए कुछ बात करनी है। मैंने परमात्मा बोले आण दे बेटा अपनी कौन सी बैटरी खर्च हो है, मार लेगा मगज, बोल लेगा, कर लेगा जो कहेगा, मानेगा तो इसका भला, ना मानेगा तो इसका बुरा होना ही है। तो इतने में वो लड़की मटका उतार के परमात्मा ने कहा जा बेटी बुला लिया महाराज जी उस महात्मा को। वो बाहर आई आंगन के गेट पे कि महाराज जी आ जाओ पिताजी अंदर बैठे आपको बुला रहे। तो वो कहने लगा कि लड़की ऐसे कर ये मेरा लोटा ले, लोटा खाली ले रखा था कि इसको जल का भर के ला। अब उसको फड़क सी तो निकले दाने को रुपा मनाली पानी पी लिया था उसने, वो लोटा ले रहा था, कहने लगे पानी ला, वो जग लाई बड़ा 2-3 गिलास के और डाल दे और डाल दे, वो फुल कर दिया, कति लबालब भर दिया, इतना फुल कर लिया कि जरा सी भी कोई और उसमें जल डाल ले तो बाहर जावे कति किनारे थी। और कहा बेटी ले इस लोटे को लेकर कबीर जी के पास जा और क्या उत्तर दे मुझे बता। वह लड़की धीरे 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 लेकर गई और कहा पिताजी ब्राह्मण तो अंदर तो आया नहीं और ये ऐसे ऐसे कहा है। कबीर जी ने एक मोटी सुई थी बड़ी वो डाल दी उस लोटे में और कहा बेटी जा, उल्टा दिया और कह दिया ये उत्तर दे दिया। वो लड़की धीरे धीरे लेकर आई, कहा ले पित ब्राह्मण ये लोटा पकड़ तेरा, क्या उत्तर दिया कबीर ने? कबीर जी ने क्या उत्तर दिया? लड़की बोली जी उत्तर कुछ नहीं दिया, इसमें सुई डाल दी, देखिए इसके अंदर है। तब वो अंदर गया और इतनी दूरी पर खड़ा हो गया बैठ, तो कहने लगा कबीर तने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? परमात्मा ने कहा कि तेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपनी मां से अपना नाम बदलवाना है, मैं सर्वानंद नाम है मेरा, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, मैं अपनी मां से सर्वाजीत नाम रखवाना चाहता हूं। मेरी मां ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रख दी कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करके आपको पराजित कर दूंगा तो मेरी मां मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी। मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं और ये लोटा मुझे तेरे पास देने का, पानी से भरकर भेजने का मेरा ये प्रश्न था कि मेरे साथ वाद विवाद करना व्यर्थ होगा तेरा। मैं ज्ञान से ऐसे परिपक्व हूं, इतना फुल अप हूं कि इस लोटे में पानी पूरा भरा हुआ, इसमें और जल डालोगे तो बाहर जाएगा, इसमें समावेगा नहीं। मैंने इसलिए ये लोटा भरवा के तेरे पास भेजा पानी का, तेरा क्या उत्तर है? मेरा ये उत्तर है, कबीर जी कहने लगे मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे मैंने यह सुई इसमें डाली है, यह सुई तेरे लोटे के तली में पहुंच गिर पानी बाहर निकल गया। मेरा ऐसा वजनदार ज्ञान है जो तेरा सारा पानी अंदर तू भर रही हो अड़ंगा ये बाहर होगा, मेरा ज्ञान तेरे अंदर ऐसे जगह बनाओगा जैसे सुई ने बना दी। फिर वो आकड़ गया, अच्छा कर शास्त्रार्थ, प्रश्न करो प्रश्न करो। अब वहां सारे जुलाए इकट्ठे हो गए, आकाश क्या होगा क्यों होगा इनका, क्योंकि कबीर जी पहले चर्चित थे। अरे खास बात हो आग्रह पुण्यात्माओं, जिस कुल में या किसी गांव में नगर में यदि कोई परमात्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा महात्मा होते हैं, तो उस क्षेत्र के आसपास के लोग उसमें अवगुण ही देखा करते हैं, गुण तो दूर वाले ही ढूंढा करते हैं। तो वो लोग नो सोचन थे कि यू घना नो कहे मैं सब न मेरा आगे कोई नहीं टकता, आज आ गया ब्राह्मण, आज इसके छक्के छुड़ा के जागा कबीर के कॉलोनी आड़े खुश हो रहे। अब वहां बैठ गए कोई सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष शास्त्रार्थ सुनने के लिए, तो कबीर जी से कहा कि बोल क्या प्रश्न करता कर मैं उत्तर दूंगा। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देव बता। और यहां सारे फेल बोला गया, फिर कर कहने लगा इसका तो कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं, देख लो कॉलोनी वाले क्या बकता है ये। परमात्मा ने कहा मैंने आपसे ये प्रश्न किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनके दादाजी कौन है, ये प्रश्न है मेरा। तो वो सर्वानंद कहता है मेरा उत्तर नहीं सुना तूने, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है ये, अजरो अजर अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तब परमेश्वर ने कहा सर्वानंद तू ब्राह्मण है, तेरे साथ सब ग्रंथ हैं और परमात्मा को साक्षी रख के पढ़ देवी भागवत तीसरा स्कंद। आप देखिएगा पुण्यात्माओं, उसने वो तो साथ ले रहा था, फटाफट खोले और देखा वहां क्या पाया देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब ज्यादा ना दिखाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ है, तीसरा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा को कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि सर्वानंद शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 6-7-8 निकाल के देख, उसमें लिखा है कि सदाशिव रूपी काल है और इसी के इसने अपने शरीर से एक औरत स्त्री अलग की और उसको प्रकृति कहते हैं, तीनों देवों की माता त्रिदेव जननी कहलाती है, वो अपने अष्टंगी है और हथियार रखती है। और सदाशिव कौन है, ये काल है, इस काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, उसका नाम विष्णु रखा, इसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, इसी से शिव की शंकर महेश्वर की उत्पत्ति हुई, इन्हीं दोनों से। और आप कहते हो कि इनके माता पिता नहीं, अधरोमर है, ये तो नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब उसने खोल कर देखा, वो सामने सब अशिक्षित बैठे थे, इन नकली ब्राह्मणों का गुरुओं का नो दाव लगा मंडलेश्वर में ऋषियों का, वो देख तो लिया उसने, कहा लिखा तो सच्चा, कहने लगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं लिखा है। और फिर और ही संस्कृत शुरू कर दी, कोई उपनिषद घोट रहा था संस्कृत में, करेगा गोस्वामी गोस्वामी काफी देर तक। तो जब काफी देर संस्कृत बोलते न होगी और कुछ बन रहा था, तो उन जुलाहों ने जो अनपढ़ थे उन ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हार गया। ये शास्त्रार्थ ने नो नाश कर रखा था, ये बताई दो आपस में संस्कृत के, वो तो उतलो परमात्मा से वार्ता थी, वैसे भी इस ब्राह्मण ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करता था, बोले आदमी जिन्हें कुछ भी ना बेरा था, जो संस्कृत भी नहीं जानते थे वह बैठते थे सामने श्रोता, और जो ज्यादा संस्कृत बोलता बोलता डटे ही नहीं था उसको विजयी कर देते, दूसरा थे उस तो फालतू भी जानता हुआ हर जाया करता था। तो परमात्मा ने प्रसन्न तो किया था कि देख इसमें लिख रखा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता लिखा इसमें, उसने वह ना सुना, अगर कुछ और सुनाना शुरू कर दिया। अपने आत्मा एक समय किसान अपने पुत्र के साथ खेत में बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, रविवार का दिन था, और वो लड़का उसका 6-7 कक्षा में पढ़ा करता, और उसने इंग्लिश में एक दो जैसे एप्लीकेशन होती है सिक लीव वा गोट रखी, और कुछ ऐसे होते हैं इंग्लिश के माय स्कूल माय बेस्ट फ्रेंड दी काओ, इस तरह के वो याद कर रहा था बालक। एक अंग्रेज आ गया गाड़ी में कार ले रहा था और रास्ता भूल गया, उसने हाथ दिया गाड़ी रुकवाई बैलगाड़ी, वो कार से नीचे खड़ा था, उसने इंग्लिश में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? अब वो अंग्रेजी में बोला, उनका समझवाओ नहीं बाबू बेटा गए, पिता पुत्र कोई समझ नहीं पाया। तो उसके पिताजी ने सोचा मेरा बेटा भी तो अंग्रेजी बोला करे, कहने लगे बेटा इस अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिया, सुना दे अंग्रेजी, ये भी के जाने का काम के अंग्रेजी नहीं बोल रहा जानते, सुना दे बेटा। तो उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में टू दी हेडमास्टर, आई एम एल टू डे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव, योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने माथे माथ मारा, मैं पूछू रास्ता बताओ, सुना वे सिक लीव, और बैठ के अपनी कार में चलो और कि तो पूछू, चल पड़ा। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे की कमर समतवाई, वाह बेटा तनाज मरी इज्जत रख दी, अंग्रेजी में अंग्रेज राज यार भगा दिया। वो बेटा बोला पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब सुन ले तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, कार छोड़कर भाग जाता। तो पुण्यात्माओं ये इसे विद्वान थे, परमात्मा प्रसन्न के कर रहे हर उत्तर के दे रहे, वो बांडे हुए शनिपात के मरीज की तरह। आखिर में जब सभी दुलाहों ने उसका समर्थन कर दिया, सर्वानंद जीत गया, सर्वानंद जीत गया, परमात्मा बोले भाई ठीक है आप जीत गए, मार गया एग्जाम रहा, क्यों मगज खा चाटे तू, बोले नू ना जाऊं लिख दे। परमात्मा बोले मैं तो भाई अनपढ़ हूं, लिख ले तू, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया, पर शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। अंगूठा ला लिया, परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले जा भाई। अपनी मां के पास जाके कहने लगा, माता जी उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे और कह दिया मैं हार गया तुम जीत गया। पर उसकी मां बोली भाई एक बार सुना ये पढ़ के, कुछ लाया लिखवा के? हाँ लिखवा के लाया मां, मैं कच्चा काम नहीं करता। उसने पढ़कर सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर परमेश्वर जीत गया। उसकी मां बोली रे तू नू गया था, जीत का तो हर का रहा है। जब ध्यान से देखा कि मां ये तो मेरे ना गलती से लिखा गया, मैं फिर जाता हूं अगजा फिर लिखा के ला, वो फिर गया परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे से गलत लिखा गया, एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लिख ले भाई मेरा के गुट्ठा गिस्सा है, फिर ला दूंगा। फिर ला दिया, फिर आके सुनान लग गया, फिर वही पाया सर्वानंद हार गया, कबीर परमेश्वर जीत गए। उसकी मां बोली रे तू दूर तक जावा है क्राइम लिख लिया कित, और तीसरी बार फिर गया फिर लिखवा लिया। अब उसने सोचा कि मैं लिखू ठीक, आड़क की बिजली ग्रह गराती ही। उसने सोचा अब घर में प्रवेश करते समय बाहर देख रहा सही लिखा है, फिर उसने ऐसे देखता देखता देखता, वो मां सामने बैठी थी खाट पे चारपाई पे, अंदर प्रवेश किया, मां के पास जाते ही वो अक्षर बदल गए, प्रवेश करते घर में उल्टा हो गया, वही जो लिखा होता था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया कबीर जी जीत गए। अब न्यू करे कभी मां का नहीं देखा, कभी चिट्ठी का नहीं देखा। उसकी मां बोली रे बोलता क्यों नहीं, सुना न के लिखवा गया है, बैठ गया न्यू का न्यू आंखों के सामने, जब अक्सर पलटे तो दिल कांप गया उस विद्वान का। तब उन्होंने बोला मां इतना कहा था, जो बोली रे के मां मां कर रहा है बेटा, भगवान आ रहे तेरी मां का क्या हाल हो रहा था तने बेरा पता तुझे? उसकी मां ने बहुत समझाया, ने बोलिया मां बात तो सही कह रहे हो आप, मैं तो गढ़ा नीच आदमी हूं, बिल्कुल जो बोल रहे थे शास्त्र में सही वही लिखा हुआ है, मैंने अभिमान वश नहीं मान्या, मेरा उद्धार करा दे मेरी मां। मां की आत्मा हमेशा ये पुकार करती थी, परमात्मा मेरे बच्चे को भी चरणों में ले, ये तो फुल्ला फेरा से नाला है, किसने कहेगा बिना मेरा, अरे पुसु यो नीम जागा, इसका उद्धार करियो मेरे दाता। अब वो दिन आ गया दाता परमात्मा का आशीर्वाद, बेटी शांति राख सारे काम होंगे, ये कहा करते थे प्रभु। तब उसको कहने लगा मां मुझे नाम दिवा दो, मुझे शर्म लगती है, मेरे साथ चल। अब चल बेटा यू काम तो मैं करवाऊंगी तेरा, नाम दिवाया अपने बेटे का उद्धार करवाया। अब के समस्या आई, परमात्मा ने उसको समझाया ज्ञान ऐसे ऐसे है, वो फिर और ब्राह्मणों ने बतावे, उन ब्राह्मणों ने मां बेटे को जाति से निकाल दिया, अब परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, ये नाम हो आपके पास और चाहे देश निकाला भी निकल मिल जा, नाम सहित बेवतन भला और चाहे दर दर मांगे भीखा, और क्या भया छत्तर की छा चाल यू राजपाट दिल्ली का। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोए जानियो जिस पर राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव की।